assumption. बचपन में हमने एक किताब पढ़ी थी और उसमें एक कहानी सुनी थी। कहानी जिस लेखक ने लिखी, उस लेखक ने अपनी मृत्यु तक उस कहानी को लगभग अपने देश भर के या विश्व भर के व्याख्यानों में 6000 बार, 6000 से भी ज्यादा बार सुनाई है। उस लेखक का नाम था रसेल कॉनवेल और उस किताब का नाम था एकर्स ऑफ डायमंड, हीरो की खान। ऐसा उस कहानी में क्या था कि उस लेखक ने ये एक ही कहानी जहां पर भी वो गया, जहां पर भी उसने प्रवचन किए, उसने लगभग 6000 या उससे भी ज्यादा बार ये कहानी सुनाई। कहानी सत्य घटना पर आधारित है। कहानी का सार यही है कि उसमें संक्षेप में एक किसान है जो कि अफ्रीका में रहता है और दूसरे किसानों से उसने सुना है कि अफ्रीका में बहुत प्रचुर मात्रा में हीरो की खाने हैं और उसने ये जाना भी कि उसके कई सारे किसान मित्र जो है उन्होंने इस तरह की हीरो की खान पाई है। दिन रात ये विचार उसके मन में चलता है कि मुझे भी ऐसी कोई हीरो की खान पानी है। उत्साहित हो जाता है, क्या मैं करूं कि मुझे भी अफ्रीका महाद्वीप के किसी जगह पर ऐसी ही हीरो की खान मिल जाए। अपनी सारी खेत, अपने सारे धंधे को समेट कर, अपनी जमीन को बेचकर वो निकल पड़ता है ऐसी ही हीरो की खान की तलाश में। सत्य घटना है, दिखाया है कि वो व्यक्ति जीवन पर्यंत भटकते रहता है, ताउम्र खोजते रहता है उस खान को, परंतु उसे वो खान मिलती नहीं है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि इतना निराश और इतना हतोत्साहित हो जाता है और उसी उदासी में एक दिन नदी में कूद जाता है जीवघात और मर जाता है। जिस व्यक्ति को उसने वो अपना खेत बेचा था वो दूसरा किसान कई हफ्तों के बाद, वो जो व्यक्ति है, ये जो नया किसान, एक दिन पाता है कि उसके खेत के बीच से एक नदी बहती है और जब नदी को पार कर रहा होता है तो पाता है कि एक चमकीला पत्थर है, लाल और नीले रंग का, जिसमें से प्रकाश आ रहा है और जैसे ही सूर्य की किरणें उस पत्थर पर पड़ रही है सप्तरंग वहां से निकल रहे हैं। उसे आश्चर्य होता है यह कौन सा पत्थर है। वो पत्थर को उठाता है, सोचता है अपनी अंगूठी में लगाऊंगा, ये पत्थर बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ मास के बाद एक दूसरा यात्री उस किसान के घर आता है और उसे दिखाता है ये पत्थर मुझे मिला। वो दूसरा यात्री कहता है ये पत्थर तुम्हें कहां मिला। वो कहता है नदी के पास, नदी में पड़ा हुआ था। वो कहता है कि ये पत्थर साधारण पत्थर नहीं है, ये इस देश का बेशकीमती हीरा है। ऐसा हीरा तो और कहीं मिल ही नहीं सकता। वो दोनों किसान और यात्री पहुंचते हैं उस नदी के पास और खोजबीन करते हैं तो पाते हैं उस हीरे में ही, उस नदी में हीरे ही हीरे हैं। थोड़े समय के बाद उस खेत की खुदाई करते हैं तो पाते हैं वो सारा ही खेत एक बेड ऑफ डायमंड्स, एक जैसे हीरे ही हीरे हैं उस खेत के नीचे। बाद में वहां पर अफ्रीका में जो आज किम्बरली डायमंड माइंस जिसको कहते हैं, किम्बरली डायमंड माइंस उसके नाम से वो प्रसिद्ध हुआ, विख्यात हुआ। सबसे ज्यादा हीरे वहां पर मिलते हैं, द बिग होल भी उसे कहते हैं। इस लेखक ने ये कहानी कई बार सुनाई और अपने व्याख्यान के दरमियान हमेशा कहा, जिन हीरो को हम बाहर खोज रहे हैं वो कहां है? हमारे ही खेत के नीचे है। जिन शक्तियों को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जिन खजानों की हम तलाश बाहर कर रहे हैं, जो धन हम बाहर खोज रहे हैं, वो धन कहां है? अंतस में, अंतर जगत में वो धन है। वो खजाने, वो सारे ही खजाने बाहर नहीं, अंदर है। वो सारा ही धन संपदा बाहर नहीं, अंदर है। काल्पनिक कहानी है कि देवताओं ने जब मनुष्य सृष्टि की रचना हो गई थी तो सोचा, ऐसी वो बहुत सारी शक्तियां हैं जिससे मनुष्य की सारी इच्छा पूर्ण हो सकती है, उन्हें कहां रखा जाए। देवताओं की मीटिंग हुई, सभा हुई, किसी देवता ने कहा कि इसे आकाश में छुपा दिया जाए ताकि मनुष्य वहां तक पहुंचे ना। परंतु किसी ने कहा कि नहीं, मनुष्य बहुत चतुर हो जाएगा, एक दिन पहुंच जाएगा आसमान में। किसी ने कहा जंगल में छिपा दो ताकि मनुष्य इन शक्तियों के पास पहुंच ना पाए। ऐसी शक्तियां अगर मनुष्य को प्राप्त हो जाए तो उसकी सभी इच्छाएं, सभी कामनाएं पूर्ण हो जाए, स्वर्ग धरा पर खड़ा हो जाए। ऐसी वो शक्तियां। कोई देवता कहता है इसे जंगल में छिपा दो, कोई कहता है इसे गुफा में छिपा दो, कोई कहता है इससे कुछ नहीं होगा, मनुष्य गुफा में भी पहुंच जाएगा, क्यों ना हम इसे समुद्र के तल में छिपा दे। परंतु किसी ने कहा कि नहीं, मनुष्य एक न एक दिन समुद्र की गहराई में भी पहुंच जाएगा, क्या किया जाए। तब अंत में एक देवता ने कहा, एक जगह है जिसे जहां पर इन शक्तियों को छिपाया जा सकता है, जहां पर मनुष्य कभी नहीं आएगा, कभी सोचेगा भी नहीं, उसकी दौड़ बाहर की है, क्यों ना इन शक्तियों को उसी के मन में छिपा दिया जाए ताकि मनुष्य सब जगह ढूंढेगा, खोजेगा, भटकेगा, परंतु उसे कभी ख्याल भी नहीं होगा कि जिन शक्तियों की मैं तलाश कर रहा हूं वो शक्तियां मेरे ही अंतः चेतना में छिपी हुई है। सर्वशक्तिवान धरा पर आया है, हमें उन्हीं शक्तियों का स्मरण कराने। वो परम सत्ता अवतरित हुई है इस धरा पर और कह रही है कि वह शक्तियां तुम में है, उन्हें जानो। वह खजाना, वह संपदा, वह प्रॉपर्टी, वह ट्रेजर, वह रिचेस तुम्हारे पास है। बाहर नहीं ढूंढो, बाहर नहीं खोजो, मुझे नहीं मांगो, तुम्हारे पास है। 15 तारीख दिसंबर मास 1999, अभी अभी सुपर साइक्लोन हुआ था अक्टूबर मास उड़ीसा में, अभी अभी एक दिन पहले ही वर्ल्ड वीकली न्यूज अमेरिका का जो न्यूज़पेपर है उसमें खबर छपी थी 14 तारीख 14 दिसंबर 1999 कि सृष्टि का विनाश होगा 2000 में। एक सेकेंड में अकॉर्डिंग टू बेथलेहम प्रोफेसीज सारी धरती पानी के नीचे होगी, भय का वातावरण जगत में। बाबा कह रहे उधर है भयभीत हो रही है आत्माएं और तुम वो घबरा रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो, गहराई में जा रहे हो। किसकी गहराई में जा रहे हो? मन का मौन अर्थात ज्ञान सागर के तले में जाना और क्या ले आना, अनुभव के रथ में ले आना ऐसी पार्श्वभूमि। इस बैकड्रॉप में ये मुरली चल रही है इसी हॉल में। बाबा शक्तियों की बात कर रहे हैं, शक्तियां तुम्हारे पास है। आज की मुरली में ऐसी आठ शक्तियों की चर्चा है, 3C और 5S। 3C है इंग्लिश का सी, 3C और 5S कौन से सी है और कौन से एस है? प्रशांत भाई कौन से सी है और कौन से एस है? सी पर आएंगे सबसे पहले, 3C कंट्रोल कंसंट्रेट और कैच, कैचिंग पावर कंट्रोलिंग पावर और कंसंट्रेशन पावर। 3C और 5S कौन से 5S? कौन सा 5S? पहला संकल्प शक्ति। बाबा ने कहा यह संकल्प शक्ति तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है, परंतु वह संकल्प कैसे होना चाहिए? शुद्ध शुद्ध निस्वार्थ स्वच्छ स्पष्ट श्रेष्ठ। तो सबसे पहला है संकल्प शक्ति, दूसरा है शुभ भावना और शुभ कामना की शक्ति, गुड विशेस एंड प्योर फीलिंग्स की पावर, पहला थॉट पावर, दूसरा शुभ भावना और शुभ कामना की शक्ति, तीसरा एस साइलेंस पावर, चौथा एस आज की मुरली से शक्ति योग में आज की मुरली से स्पिरिचुअल लाइट आध्यात्मिक लाइट स्पिरिचुअल लाइट या जिसको कहेंगे आध्यात्मिक लाइट, इंग्लिश ट्रांसलेशन में मुरली का सोल पावर। उसके बाद अगला है साइलेंस, बोल दिया साइंस, साइंस संकल्प शक्ति, शुभ भावना शुभ कामना की शक्ति, साइलेंस की शक्ति और साइंस की शक्ति, आध्यात्मिक लाइट की शक्ति। और उसके बाद में 3C, पहला सी कंट्रोलिंग पावर कॉन्सेंट्रेशन पावर और तीसरा कैचिंग पावर। सभी शक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक थोड़ा अलग है साइंस, उसी के साथ में हम ऐड कर देंगे साइंस या ऑकल्ट पावर, जिसको बाबा ने कहा रिद्धि सिद्धि, वो अल्पकाल के चमत्कार करते हो करते हैं और तुम कल्याण के चमत्कार करते हो, जो आत्माओं के लिए क्या बन जाते हैं, वरदान बन जाते हैं। अगर ये संकल्प शक्ति होगी तो क्या हो जाएगा, परिणाम क्या है इन शक्तियों का या इस शक्ति का? वास्तव में एक ही शक्ति है, अगर देखा जाए तो शक्ति एक ही है, नाम भिन्न भिन्न है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट एक ही है परंतु जब लाइट में बहता है तो प्रकाश, जब फैन में जाता है तो हवा, जब हवा चाहिए अगर लाइट ऑन कर दो तो काम नहीं होगा। बाबा ने जो अष्ट शक्तियां गिनाई है, वैसे तो अष्ट शक्तियां और नवनिधियां, आज हम कुछ और चर्चा करेंगे इन शक्तियों के विषय में। तो यदि ये संकल्प शक्ति हमारे पास है तो क्या हो जाएगा आज की मुरली से? संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति, बाबा ने कहा एक है वाणी की सेवा जिसमें संपत्ति लगती है, समय लगता है, मेहनत लगती है और क्या लगता है, थकान भी होती है, ये चार चीजें लगती है वहां पर, परंतु इससे वो बच जाएगी। उस शक्ति को, वाणी को कंट्रोल करो, वृत्ति को कंट्रोल करो, दृष्टि की चेकिंग करो, वो कब तक? यदि संकल्प शक्ति हमारे पास है और यदि शक्तिशाली है तो बाकी स्वतः ही सब कार्य करेंगे। फिर से प्रश्न पर आते हैं, यदि ये श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति हमारे पास है तो क्या हो जाएगा? मनसा सेवा कर सकेंगे और माताओं को याद किया है आज बाबा ने, परमात्मा वरदान द्वारा चलने वाली है, गॉड मेड मदर्स, इंडिया मेड चाइना मेड होता है ना वैसे बाबा ने क्या कहा, भगवान ने बनाई हुई, भगवान ने निमित्त बनाई हुई यह आत्मा है, परमात्मा परमात्मा माता एक है, गॉड मेड मदर, ऐसी माताएं, ऐसी भगवान की पूजाएं, ऐसे रूहानी गुलाब, ऐसे इस महिला वर्ग के मेंबर्स, तो क्या हो जाएगा संकल्प शक्ति से माताएं? आत्माओं के बुद्धि का परिवर्तन होगा। क्या होगा? केवल संकल्प से, अभी बोला कुछ भी नहीं है, केवल और केवल संकल्प से इतनी पावर, इतनी एनर्जी, इतनी ऊर्जा केवल और केवल संकल्प में है, संकल्प किया है। परंतु वो संकल्प में तीन बातें चाहिए, बाबा ने कहा निस्वार्थ हो। कैसा हो संकल्प? निस्वार्थ हो, उसमें स्वार्थ ना हो, वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, कोई भौतिक सांसारिक उपलब्धि की कामना ना हो, ऐसा वो शुद्ध संकल्प हो, निस्वार्थ स्पष्ट हो संकल्प, हमें पता हो कैसा है वो संकल्प, क्या है वो संकल्प। दूसरे यदि उस संकल्प को देख ले तो हमें उसे छिपाने की आवश्यकता ना पड़े। हमारे संकल्पों को यदि कोई देख ले, सोचो डायमंड हॉल में हम बैठे और जो दो बड़े बड़े स्क्रीन हैं, हमारे मन के हर संकल्प वहां पर टाइप होकर आ रहे हैं,
कोई नहीं बैठेगा
वहां एक एक संकल्प बड़े बड़े अक्षरों में टाइप होकर आ रहे हैं, विश्व भर की आत्माएं देख रही है। अगर हमें कहा जाए कि 15 मिनट यहां बैठो, तुम्हारे संकल्प वहां पर टाइप होकर आ रहे हैं, तो कैसे संकल्प हम करेंगे? श्रीमत वाले कि परमत वाले?
15 मिनट के लिए।
तो हमारे संकल्प कितने शुद्ध हो, कितने स्वच्छ हो, कितने पवित्र हो, कितनी उनमें प्यूरिटी के वाइब्रेशंस हो, वो वाइब्रेशंस पहुंचेंगे आत्मा तक। अब वाइब्रेशंस ही पहुंचते हैं और तो कुछ नहीं पहुंचता है। प्रकंपन वो किरने किरणों तक पहुंचेगी, आत्माओं को खींच कर और घसीट कर ले आएगी एक दिन यहां पर। शब्द नहीं काम करेंगे, शब्दों के तीर तो बहुत ही छोटे हैं। स्वच्छ, स्पष्ट, निस्वार्थ, चाणक्य का उदाहरण है। उस दिन भी सुना रहे थे, भारत पर आक्रमण हो चुका है, सिकंदर ने आक्रमण किया है, भारत के राजा खंड खंड बटे हुए हैं, कैसे सामना करेंगे उस शत्रु का? द्वापर युग की शुरुआत है, गुरुकुल के वो सारे छात्र एकत्र होते हैं, वार्तालाप दिखाया है इंद्रदत्त और चाणक्य का। इंद्रदत्त उसका मित्र है, कैकेय राज पोरस, इंग्लिश में जिसे किंग पोरस कहा जाता है, उस किंग पोरस का महामंत्री इंद्रदत्त, जो कि चाणक्य का मित्र है, कहता है कि तुम जो कर रहे हो विष्णुगुप्त, वो असंभव है, जो राजाएं नहीं कर सकते काम वो तुम करने जा रहे हो। इतनी बड़ी अलक्षेंद्र की सेनाएं पदाक्रांत करते हुए भारत की सीमाओं की ओर बढ़ रही है, कैसे तुम अकेले बिना अस्त्र और बिना शस्त्र के उस सिकंदर का सामना कर पाओगे? असंभव कार्य है ये, तुम्हारे पास सेना नहीं है ना कुछ है, कैसे तुम ये कार्य करोगे? परंतु वो कहता है मुझे विश्वास है तुम ये करोगे, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा ध्येय शुद्ध है। हिमालय से समुद्र पर्यंत भारत का, भारत की पग पग भूमि मेरी भूमि है, अखंड भारत के निर्माण का जिसने स्वप्न देखा था, ऐसी वो आत्मा थी। तो एक शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ, एक शुद्ध संकल्प, निस्वार्थ संकल्प, स्वच्छ संकल्प, स्पष्ट संकल्प, मैं इस संसार में इस कल्प की श्रेष्ठते श्रेष्ठ, ऊंचते ऊंच आत्मा हूं, परम धाम में भी ऊंच, बाप के समीप, सतयुग त्रेता में भी अति पूज्य, सर्वगुण संपन्न, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं मेरे खजाने में, द्वापर में भी अति श्रेष्ठ, और अब संगम युग पर पालना भी मिल रही है, भगवान पढ़ा रहा है और श्रीमत प्राप्त हुई है स्वयं बाप से। इन चार स्वरूपों के संकल्प में स्वयं को स्थित करें, सभी अलर्ट होके बैठेंगे।
प्रेम से बस दो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए।
दूसरी शक्ति शुभ भावना और शुभ कामना की शक्ति। इसी मुरली में बाबा ने माताओं से मुलाकात, जो मुरली में आज की मुरली में छपा नहीं है, परंतु ओरिजिनल जो मुरली है उसमें बहुत अच्छी बात कही है। बाबा ने कहा, अगर टीचर को आपके घर में भेजे देखने के लिए कि घर में कलह तो नहीं है, खिटखिट तो नहीं है, तो क्या कहेगी? माताएं कहती है बाबा से, बाबा घर में ऐसा होता है वैसा होता है, हमें मारते हैं। तो बाबा ने यहां पर यज्ञ के हिस्ट्री का उदाहरण दिया है कि यज्ञ के हिस्ट्री में ऐसी कितनी ही असंख्य अनगिनत माताएं थी कि जिन्हें मारा गया, और परंतु उन्होंने अपनी शुभ भावना से, बाबा के प्यार से उन विरोधी आत्माओं को सहयोगी बनाया। बाबा ने कहा भले उनकी आदतें खराब है, क्रोध करते, परंतु तुम क्रोध ना करो। वो कहे कि कम से कम ज्ञान की ग्लानी तो ना करे, प्यार से चले, सहयोगी थोड़ा बन जाए, भले ज्ञान में न चले परंतु ज्ञान की ग्लानी तो ना करे, उनके प्रति सहयोग की भावना, स्नेह की भावना, शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। क्रोध नहीं करना है, जवाब नहीं देना है। दो वाक्य बाबा ने कहे हैं उनके ऊपर, क्रोध नहीं करना है और उन्हें जवाब नहीं देना है, सामना नहीं करना है उनका, चाहे कैसे भी हो। एक दिन तो आएंगी, जाएंगे कहां, सबको यहीं आना है। हमने देखा है कई सारी आत्माएं जो विरोध करती थी, ऐसे कितने भाई जो विरोध करते थे, 10 साल विरोध किया, 20 साल तक विरोध किया। तो ये मन में हमेशा प्रश्न रहता है कि 20 साल विरोध किया, 20 साल बहुत सताया, तंग किया माताओं को, बाद में वही व्यक्ति ज्ञान में आ गया। तो जब वो 20 साल तक विरोध कर रहा था तब भी वो देवी देवता कुल की ही आत्मा थी या नहीं थी? थी ना। इसका मतलब वो दैवी गुण, वो दैवी संस्कार उस आत्मा में थे, परंतु शायद पाठ अब नहीं खुला, परंतु खुलेगा। तो हम सभी आत्माओं को देखते हुए यही समझे कि ये सभी देवकुल की आत्मा है, सभी शिव बाबा की संतान है। हमारा हमेशा यह श्रेष्ठ संकल्प हो, क्योंकि हम नहीं जानते कौन सी आत्मा कहां से आई है। हरेक के प्रति शुभ भावना, हरेक के प्रति शुभ कामना। शुभ भावना और शुभ कामना में ही इतनी शक्ति है, केवल ये भावना अगर रखी जाए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, संसार के हर व्यक्ति का कल्याण हो, हर व्यक्ति का, हर एक वर्ष का अधिकारी बन जाए। हमें जो मिला है, हमें जो प्राप्त हुआ है, वो हरेक को मिल जाए, जैसी हमारी आत्मा, हमारी चेतना जागृत हो गई है, हर आत्मा की हो जाए। संसार दुखों में डूबा हुआ है, एक पल के लिए भी चैन नहीं है संसार में। तो दूसरी शक्ति कौन सी है? शुभ भावना और शुभ कामना की शक्ति। तीसरा बाबा ने कहा स्पिरिचुअल लाइट, स्पिरिचुअल माइट, आध्यात्मिक शक्ति, सोल पावर। आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि जो कार्य विज्ञान असंभव समझता है, वो इस सोल पावर से हो सकता है, साइलेंस पावर से हो सकता है। इतनी शक्ति आत्मा में है। और जो रिद्धि सिद्धि वाले हैं, वो इतने सारे चमत्कार कर सकते हैं, तो हम नहीं कर सकते। कुछ दिनों पहले बाबा ने वरदान दिया था, तुम रूहानी जादूगर हो, वो हद के जादूगर, सेकंड में विचित्र खेल दिखाते हैं। तुम भी बड़े से बड़े जादूगर हो, रूहानी जादूगर। केवल दो संकल्प, एक सेकंड में दृढ़ता के साथ संकल्प करो मैं आत्मा हूं, तो स्व का कल्याण हो जाएगा। ये संकल्प करो मैं आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हो, तो विश्व में परिवर्तन आएगा। ये है क्या? एक संकल्प मात्र तो है, केवल एक छोटा सा संकल्प, मैं देह नहीं यह आत्मा हूं। देह की स्मृतियों से ऊपर उठाता है हमें, इस देह के भान ने ही इतना दुखी बनाया है। इस देह की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, आकर्षण, आसक्ति, विकार, इसी ने नीचे गिराया है। तो छोटा सा संकल्प, तो सोल पावर, इस सोल पावर को बढ़ाना है। संगम युग में हमारे जीवन का एक लक्ष्य हो कि हमें स्वयं में स्पिरिचुअल पावर्स भरनी है। हम आज जितने शक्तिशाली है, कल उससे अधिक शक्तिशाली हो, हर दिन शक्तिशाली। हमारी शक्तियां बढ़ती है। बाबा ने इस मुरली में तीन बातें कही है करने के लिए। सबसे पहली बात, संकल्प शक्ति को जमा करो या बढ़ाओ। क्या करो? संकल्प शक्ति को जमा करो। जितना जमा होनी चाहिए उतनी जमा नहीं है। इस शक्ति को बढ़ाओ, इसको जमा करो, पहली बात। दूसरा, संकल्प शक्ति के ऊपर अटेंशन। अभी साधारण अटेंशन है, जितना अटेंशन होना चाहिए उतना नहीं है। संकल्प शक्ति गंवाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प। जैसे उदाहरण दिया, वो इकोनॉमी से चलने वाला कोई व्यक्ति यदि है तो संपन्न हो जाता है, परंतु जो गवाता है वो धोखे में रहता है, धोखा खाता है। इसके लिए सबसे पहली बात क्या करनी है? संकल्प शक्ति को जमा करना, संकल्प शक्ति को बढ़ाना। दूसरी बात, संकल्प शक्ति के ऊपर अटेंशन। और तीसरी बात कौन सी है, कौन बताएगा? उनका प्रयोग करना, संकल्प शक्ति का क्या करना? प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंटिंग विद द पावर ऑफ थॉट। ये संकल्प किया, उसका क्या परिणाम है? एक्सपेरिमेंट करना संकल्प शक्ति के ऊपर। ये तीन होमवर्क सभी याद रखेंगे इस मुरली से। सबसे पहला, संकल्प शक्ति को जमा करना है। थोड़ी थोड़ी संकल्प शक्ति जमा होती जाए, रोज प्रयोग करना है, थोड़ा थोड़ा प्रयोग करना है संकल्प शक्ति का। योग के प्रयोग अलग, संकल्प शक्ति के प्रयोग अलग। हम यहां से जा रहे हैं, हमें ट्रेन पकड़नी है, लेट हो गया है, हम संकल्प करें कि जब तक मैं ट्रेन में कदम ना रखूं ट्रेन चालू नहीं होगी। एक बार उदाहरण बताया था ना कि एक सन्यासी बचपन से ही हिमालय में चला गया, सारी उम्र वहीं रहा, फिर जब युवा हुआ 30-40 साल का उतरा, नीचे आया हिमालय से, बनारस रेलवे स्टेशन पर न्यूज़पेपर में छपी हुई खबर है, ट्रेन में जाकर बैठ गया, टीसी आया, कहा टिकट, उसने कहा टिकट नहीं है, उसको कहा उतरो नीचे, उसको नीचे उतार दिया। सन्यासी युवा ब्रह्मचर्य के तेज और ओज से परिपूर्ण बैठ गया एक जगह वहां पर स्टेशन में, ट्रेन चालू ही नहीं हुई, बाद में ट्रेन का टाइम हुआ, ट्रेन चालू ही नहीं हुई, सारे डब्बे 1 से लेकर 12 तक खोजे गए, कहां गड़बड़ है, इंजीनियर को बुलाया गया, कहीं पर कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या हुआ है। उस टीसी को संकल्प आया, वो साधु कहां है उसको ढूंढो, उस युवा सन्यासी को खोज कर लाओ। युवा सन्यासी को ढूंढते हैं, सन्यासी ट्रेन में बैठता है, ट्रेन चालू।
हमारे कारण कोई लेट हो जाए तो
हाँ, इसमें भी एक दूसरी बात है, रिद्धि सिद्धि की बात है। ये जो शक्तियां, इनका प्रदर्शन यदि किया जाए, ये जो शक्तियां ये गुप्त शक्तियां हैं, यदि हम इसका प्रयोग करें, प्रदर्शन करें और दूसरों को प्रभावित करने का कोशिश करें, तो ये हमारे अध्यात्म के मार्ग में बाधा बन जाएगी। उसको रिद्धि सिद्धि कहते, बाबा ने कहा ना हद के चमत्कार। इन ये शक्तियां इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि हम इन्हें केवल और केवल सूक्ष्म और गुप्त रीति से प्रयोग करें, दिखावा ना करें, आडंबर ना हो इसका। अगर दिखावा करे और प्रसिद्धि की कामना रखे कि लोग मुझे जाने या स्वार्थवश करे, तो फिर तो बहुत बड़ा धोखा है। जैसे दिखाया है, एक बार एक व्यक्ति होता है जिसके पास ऐसी सिद्धि प्राप्त करता है, वो बहुत समय की साधना के बाद कि हवा को रोक सकता है। दिखाया गया एक बार वो एक नाव में यात्रा कर रहा है, छोटी सी नाव है जिसमें 2-3 यात्री है, हवा इतनी तेज बहने लगती है, तेज बहने लगती है, तूफान सा माहौल हो जाता है। वो हवा को आदेश देता है कि रुक जाओ, हवा रुक जाती है, शांत हो जाती है। वहीं पर बहुत दूरी पर उसी समुद्र में एक दूसरा जहाज आते रहता है, एक बहुत बड़ा जहाज जिसमें 200-300 यात्री होते हैं, और जैसे ही हवा रुक जाती है, वो जो जहाज है उसके जो पाल है वो भी थम जाते हैं और हवा बहना ही बंद हो जाती है, तो जो दूसरा जहाज है वो डूब जाता है, उसमें जितने लोग होते हैं वो सारे डूब जाते हैं। ये पाप की वजह से उसकी सारी सिद्धि समाप्त हो जाती है इस व्यक्ति की। ऐसी कहानी दिखाते हैं कभी भक्ति में। तो ये शक्तियां बहुत सूक्ष्म है, तो सबसे पहला संकल्प, दूसरा शुभ भावना, तीसरा आध्यात्मिक लाइट, चौथा साइलेंस पावर। ये योग का बल है, ये थोड़ा थोड़ा योग का बल रोज जमा करते जाना है। हमारा दिन भर का थोड़ा 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 योग किबिलिटी योग बल बन जाएगा, और वो हमें परिस्थिति, विषम परिस्थितियां या जीवन में लास्ट समय, अंतिम समय, बाबा ने शब्द प्रयोग किया अंतिम समय, अंतिम सेवा, अंतिम स्टेज, क्विक सेवा करेगा ये योग बल ही, और यही हमारा सुरक्षा कवच बन जाएगा एक दिन। मनसा सेवा का तो आधार ही ये है। साइंस का बल, बाबा ने कहा साइंस के साधन एक दिन सभी समाप्त होने हैं, साइंस का भी एक बल है, परंतु यहां बाबा ने एक कंट्रोलिंग पावर के साथ में उदाहरण दिया है। ये जो 3 C है, पहला C कैचिंग, कंट्रोलिंग और कॉन्सेंट्रेशन। तो कैचिंग पावर जो है, कंट्रोलिंग पावर जो है, जैसे साइंस स्विच ऑन ऑफ, वैसे जितना समय चाहो, जहां चाहो और जब चाहो मन को लगा सको, ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो। अब हम आते हैं इन 3 शक्तियों के ऊपर। सबसे पहली है कॉन्सेंट्रेशन पावर, मन को एकाग्र करने की शक्ति। क्यों जरूरी है एकाग्रता इस ब्राह्मण जीवन में? 3 चीजों में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सबसे पहला अमृत वेला, या कहो योग में। दूसरा मुरली सुनना या पढ़ना, या कहो ज्ञान में। और तीसरा कर्म में, जो सेवाएं हैं हमारी, वहां पर एकाग्रता की शक्ति की बहुत आवश्यकता है। योग हमारा शक्तिशाली तभी होगा जब हम एक संकल्प में स्थित होने का अभ्यास करेंगे, जब चाहो, जितना समय चाहो, जहां चाहो, उसमें कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। ऐसी पांच बातें हम आपको बताएंगे जिससे हमारी एकाग्रता की शक्ति बढ़ जाए। इस ब्राह्मण जीवन में एकाग्रता के ऊपर विश्व भर में हजारों किताबें और हजारों प्रकार की चर्चा होती है। अध्यात्म भी इस कंट्रोलिंग कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए हजारों टेक्निक्स है, परंतु इस ब्राह्मण जीवन में हम ब्राह्मणों के लिए जो उपयोगी होगी ऐसी चार पांच बातें। सबसे पहला, कैसे हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाएं। मुरलियों में बहुत बार आता है चित्रों के सामने जाकर बैठ जाओ, इसे कहते हैं पिक्चर टेक्निक। किसी भी एक चित्र के सामने बैठना या जो भी चित्र को हम देखते हैं उस चित्र में क्या क्या है उसका मन ही मन वर्णन करना। जैसे सतयुग का चित्र है, ये सामने चित्र है, इस चित्र को हम देखें और इसमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मन ही मन उनका उसका वर्णन करें। जो लिख सकते हैं लिखे, जो लिख सकते हैं वो लिखे, चित्र जो है उसका वर्णन, चित्र वर्णन, इसको हिंदी में कहा जाता है चित्र का वर्णन करना। ये करते करते ही मन एकाग्र हो जाता है। कोई भी चित्र लिया जा सकता है, चाहे शिव बाबा का ज्योति बिंदु है उसे देखकर शिव बाबा के गुण क्या है, वो जो गुणों वाला चित्र है उसको याद किया जाए। ये करते करते मन एकाग्र होता है, पहला। दूसरा, वॉचिंग थॉट्स, एक जगह स्थिर बैठ जाना और मन में जो विचार आ रहे हैं और जा रहे उन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं करना। कैसे भी आ रहे कैसे भी जा रहे उन्हें देखना, साक्षी होकर देखना। हम ये योग के प्रयोग नहीं बता रहे, कॉन्सेंट्रेशन की टेक्निक बता रहे हैं। अपने मन को साक्षी होकर देखना, कौन से विचार आ रहे हैं और कौन से विचार जा रहे, केवल देखना। ये नहीं कहना ये क्यों आ रहा है, ये निगेटिव है, ये व्यर्थ है, केवल देखते रहना। परंतु हम जब बैठे, इतना स्थिर बैठे, ये जो शरीर है एकदम स्थिर हो जाए, चाहे चेयर पर बैठे या कहीं और बैठे, एकदम स्थिर, और हो सके तो आंखें बंद करके बैठ जाए और अपने ही मन के विचारों को देखना। इससे हमारी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ेगी। तीसरा, सुनना, आवाजों को सुनना। तीसरा, सुनना, किसको सुनना, आवाजों को सुनना। आंखें बंद करके बीच बीच में कभी कभी बैठ जाना, और सबसे सुंदर तो यह होगा यदि हम प्रकृति के सानिध्य में बैठे, पहाड़, झील, नदी, झरना, समुद्र, प्रकृति जहां है, छत और जो भी आवाजें सुनाई दे रही है, अगर ये सब नहीं है तो हमारा जो सॉफ्ट म्यूजिक है, मेडिटेशन म्यूजिक, उसमें भी अगर हम उसको सुने, एक भी आवाज छूटने ना पाए, चाहे पंछी की आवाज, झरने का आवाज, उस एक एक आवाज को सुनने का प्रयत्न करना। क्लायर ऑडियंस के लिए ये टेक्निक सुनाई बताई जाती है। क्लायर ऑडियंस मतलब बाबा ने आज जो कहा कैचिंग पावर, उसमें दो चीजें होती है, दूर की चीजों को देखना, दूर की चीजों को सुनना। क्लायर ऑडियंस, क्लायर वॉयंस, टेलीपैथी में आता है, पैरासाइकोलॉजी, परामनोविज्ञान में ये सारी बातें चर्चा होती है। दूसरे कमरे में क्या हो रहा है वो सुनना, बहुत दूर क्या हो रहा है। बाबा कहते हैं भक्तों की आवाज सुनो, ये कैचिंग पावर, वाइब्रेशंस को कैच करना, विचारों को कैच करना, उसके लिए ये टेक्निक संसार के वो व्यक्ति जो आध्यात्मिक नहीं है उनके लिए ये बताई जाती है, आवाजों को सुनना। तो हम भी ये कर सकते हैं, बीच बीच में आंख बंद करके बैठे और आवाजों को सुने, तो उससे कॉन्सेंट्रेशन पावर पड़ती है। नेक्स्ट है, रात को सोने से पहले बाबा को जब चाट देते उसके भी पहले अपनी सारी जो दिनचर्या है उसको याद करना, क्या क्या हमने किया है, सुबह उठ के, उठने से लेके रात तक किस चीज के मिले, क्या क्या हुआ। मेमोरी ट्रेनिंग में भी ये बताया जाता है, फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए ये बातें बताई जाती है। सुबह से लेकर रात तक हमने क्या क्या किया, क्या क्या सेवाएं की, क्या क्या हुआ, जैसे बाबा को सुना रहे। जो लिख सकते हैं लिखो, इसको हम चार्ट लिखना नहीं कह रहे, हम दिनचर्या को लिखना कह रहे हैं, अपनी जो दिनचर्या है उसको लिखना, डायरी राइटिंग जिसको कहते हैं, और फिर धीरे धीरे उसमें याद का चार्ट इंक्लूड करना, इससे भी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ता है। समय हो रहा है इसके लिए हम इस कॉन्सेंट्रेशन को यहीं पूरा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारी टेक्निक से इस तरह की कि रात को जब सोते हैं तो इतना स्थिर सो जाना और शरीर में जो हलचल होती है उसको देखना, शवासन जिसको कहते हैं। योग में इसका प्रयोग करना है, कॉन्सेंट्रेशन का तीन चीजों में प्रयोग करना है। सबसे पहला योग, दूसरा मुरली और तीसरा कर्म। मुरली में, मुरली पढ़ते समय एक और एक चीज करनी होती है, मुरली सुन ली, मुरली पढ़ ली, हम जो बहुत कम करते हैं काम और जो कॉन्सेंट्रेशन में बहुत काम करेगी वो है रिकॉल करना, याद करने की कोशिश करना मुरली में क्या था। मुरली पढ़ ली, मुरली लिख ली, हो गया। कोई क्लास सुन लिया परंतु उस क्लास में था क्या। क्लास सुनने के बाद एकांत में जाके, कल की परसों की मुरली में था, एकांत में क्या करो, विचार सागर मंथन करो, तभी धारणा होगी, नहीं तो नहीं, बाबा ने कहा है। तो जो भी हम पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, उसे तुरंत याद करने की कोशिश करना, रिकॉल करने की कोशिश करना क्या पढ़ा है, इससे हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगी। तो जहां एकाग्रता की शक्ति है, कंट्रोलिंग पावर जहां है, वहां कैचिंग पावर स्वतः ही आएगी। और ये तीनों ही शक्तियां जहां है, जहां संकल्प की शक्ति है, बाबा ने कहा क्या होगा, परमात्म प्रत्यक्षता होगी। इसको बाबा ने प्रत्यक्षता से जोड़ा है। अब तक कौन सी प्रत्यक्षता हो गई है, कार्य अच्छा है, कार्य श्रेष्ठ है, परंतु भगवान का कार्य है, करावन हार करा रहा है, ये भगवान इनको पढ़ाता है, ये प्रत्यक्षता अब तक नहीं हुई है। ये होगी किससे, ये होगी भी इस संकल्प शक्ति से, अपने संकल्प को इतना सूक्ष्म, इतना शक्तिशाली, इतना कॉन्सेंट्रेटेड। द पावर्स ऑफ द माइंड आर लाइक द रेज ऑफ द सन, द मोर फोकस्ड दे आर द मोर इल्यूमिन्ड दे बिकम, स्वामी विवेकानंद ने कही ये कहा है। उनके ही जीवन में एक उल्लेख है, जब कही, जब वो एक बार शिकागो में थे, एक बार एक समुद्र के तट पर घूम रहे थे तो देखा बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे हैं जिनके पास एयर गन है, और बहुत सारे अंडे के छिलके उस समुद्र में पानी में है, और वो प्रयत्न कर रहे हैं बंदूक से उन्हें हिट करने का, मारने का, परंतु असफल हो रहे। और दिखाया विवेकानंद वहां बैठे हैं, वो उनको पूछते हैं, स्वामी कैन यू ट्राई, तो वो कहते हैं यस, और वो बंदूक को लेते हैं और 12 बार 12 अंडे के जो छिलके है उनको शूट करते हैं वहां से। वो बच्चे इतने आश्चर्य हो जाते और इतने खुश होते, पूछते हैं हैव यू एवर प्रैक्टिस दिस बिफोर, क्या आपने, वो कहता है हमारे देश में तो मैंने ये बंदूक आज पहली बार ही देख रहा हूं, हमारे देश में इस तरह की एयर गन है ही नहीं, गुलेरो। तो वो कहता है ये गन तो मैंने आज पहली बार ही हाथ, देन हाउ डिड यू डू दैट, वो कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन पावर, मैंने अपने मन को ऐसा प्रशिक्षण दिया है कि जब चाहूं, जहां चाहूं, जितना समय चाहूं, उसको इस तरह एकाग्र कर देता हूं कि जो चीज तुरंत मैं ग्राप्स कर लेता हूं, उसी तरह जो मुरली चाहे, जबकि मुरली चाहे, हम उसे ऐसा पढ़े कि पढ़ लिया और वो सीधा प्रिंट हो जाए। ऐसी हमें अपनी कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाना है। उन्होंने एक जगह ये भी लिखा है, इफ आई एम गिवन अ चांस टू स्टार्ट माई एजुकेशन ऑल ओवर अगेन, आई वुड फर्स्ट डेवलप द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड देन एट अ स्ट्रोक मास्टर द कंप्लीट एजुकेशन। यदि मुझे अवसर दिया जाए फिर से अपनी पढ़ाई पढ़ने का बचपन से, तो सबसे पहले मैं कॉन्सेंट्रेशन पावर को डेवलप करूंगा और उसके बाद ये सारा जो शिक्षा है, शिक्षण है, उसे एक झटके में आत्मसात कर लूंगा। ऐसी शक्ति इस कॉन्सेंट्रेशन पावर में है। तो हमें अपने लिए कुछ बातें यहां बताई, पर अपने लिए कौन सी विधि है, क्या हम करें जिससे हमारी एकाग्रता की शक्ति, संकल्प की शक्ति बढ़ जाए, शक्तिशाली हो जाए, जो हम संकल्प करें वो सिद्ध हो जाए। उसके लिए हमें प्रयोग करने के लिए बाबा ने कहा है, एक्सपेरिमेंट करना है उसके ऊपर। बाबा ने कहा नंबरवार है एक्सपेरिमेंट करने में, बढ़ाने में, जमा करने में नंबरवार है, उसको जमा करो, उसको बढ़ाओ, देखो कि हम ये संकल्प करते हैं हुआ नहीं हुआ। सुबह जो संकल्प करे, हर दिन इसके लिए क्या करना होता है, प्लानिंग बनानी होती है, प्लान करो आज के दिन का संकल्प क्या है, आज मुझे क्या करना है, संकल्प ही नहीं है, कर्म करने जा रहे हैं, कोई संकल्प नहीं है, इंटरनेट पर बैठ रहे, कोई लक्ष्य नहीं है, तो यहाँ के मेल चेक करने और ये वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट में जाते जाते कैसे समय बीत जाता है पता नहीं चलता है, कितना समय उसमें चला जाता है, क्योंकि लक्ष्य नहीं है। हमें हमारे पास हमेशा अनफिनिश्ड टास्क, कौन सी चीजें हमने की नहीं है उसकी लिस्ट हमेशा सामने हो, ये चीजें हमने अब तक नहीं की है। विदेश में एक साइकोलॉजी में एक इफेक्ट है जिसे ज़िगार्निक इफेक्ट कहते हैं। ज़िगार्निक इफेक्ट कहता है, एक साइकोलॉजिस्ट थी जिसका नाम था ब्लूमा ज़िगार्निक, उसने एक बार देखा, उसके जो प्रोफेसर थे उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि होटल में जब बैठते हैं तो जो वेटर होता है वो सारी एक एक टेबल पर जाता है, उसे सारी चीजें याद रहती है, इस टेबल पर ये ऑर्डर दिया गया, 10 चीजें का ऑर्डर एक टेबल पर दिया गया, दूसरे टेबल पर ये खाने के आइटम्स का ऑर्डर दिया गया, और सारा उसे याद रहता है। परंतु कब तक याद रहता है, जब तक वो जो लोग है वहां आए हैं रेस्टोरेंट में, जैसे वो चले गए बस उसके बाद वो भूल जाता है। तो उसने ऑब्जर्व किया ये क्या है, तब तक ही उसको याद रहता है ये टेबल का बिल इतना हुआ, ये टेबल में ये आइटम्स इन लोगों ने खाए, इतना इसका बिल हुआ, बाद में वो भूल जाता है। उसने एक स्टडी की और पाया बाद में ब्लूमा ज़िगार्निक ने, उस लेडी ने, यंग लेडी थी 1927, उसने पब्लिश भी किया था अपनी स्टडी कि जो अनफिनिश्ड टास्क है वो हमको याद रहती है, जो किए नहीं है कर्म और एक बार काम हो गया कि वो हम भूल जाते हैं। इसके लिए बुद्धि में हो कि कौन कौन सी चीजें हमें करनी है, आज के दिन जैसे कल भगवान आ रहा है, हमें क्या करना है, हमारी स्थिति कैसी हो, हम क्या करें, कैसे हमें श्रेष्ठ अनुभव हो, इसी कल हम जब बाबा के सामने बैठेंगे तो हमें कैसे श्रेष्ठ अनुभव हो, महान अनुभव हो, बाबा के प्यार का अनुभव, उसके लिए सारे दिन भर की प्लानिंग करनी पड़ेगी, मौन रखना पड़ेगा, ज्ञान का चिंतन करना पड़ेगा, बाबा के प्यार में खोना पड़ेगा, योग के चार्ट को बढ़ाना पड़ेगा, मौन रखना पड़ेगा, अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करना पड़ेगा, बाबा जब आते उसके पहले भी जो भाई जी का क्लास और उसके बाद में जो समय होता है 6:30 से, तो बाबा के आने तक वो जो गीत बजते हैं उसमें कितनी बुद्धि भटकती है आत्माओं की, उस पीरियड को कैसे शक्तिशाली बनाए, तब कहीं जाके हमें शक्तिशाली अनुभव होगा, उसकी प्लानिंग चाहिए, जब तक वो प्लानिंग नहीं कुछ नहीं होगा। तो यहां बाबा ने आज की मुरली में समय हो रहा है शक्तियों की चर्चा की, माताओं को क्या कहा बाबा ने, घर को क्या कर दो, स्वर्ग बनाना है, घर को सुख शांति हो, घर में दिया तो मस्जिद में दिया, हिंदी में कहावत है चैरिटी बिगिंस एट होम, घर में ही कलह है, और हम घोषणा कर रहे हैं हम स्वर्ग स्थापन करने आए तो कौन आएगा। बाबा ने कहा इंक्वायरी भेजेंगे, लिस्ट भेजेंगे गवर्नमेंट के पास, तो वहां से इंक्वायरी आएंगी, देखेंगे वो लोग महामंडलेश। फिर बाबा ने महिमा भी की, माताओं को नशा कौन सा है, कौन सा नशा है, भगवान मेरे लिए आया है, हमारे लिए आया है, ये नशा है। मुरली में भी कहा है जितना श्रेष्ठ संकल्प होगा स्मृति होगी, श्रेष्ठ स्मृति होगी तो नशा अविनाशी होगी, खुशी होगी। तो ये खुशी ट्रेन में जाने के बाद कम ना हो जाए, यहां से जाने के बाद विलीन ना हो जाए, खो ना जाए, ये खुशी सदा रहे। खुशी अविनाशी एक रस नशा, अविनाशी एक रस नशा। बाबा ने माताओं की दो विशेषताएं बताई, एक तो रूहानी गुलाब और दूसरा जिम्मेवारी, इतनी बड़ी जिम्मेवारी निमित्त बने हैं। महामंडलेश्वर भी, उनको भी ईर्ष्या हो जाए देखकर कि कैसे ये आपस में रहते। जो कहावत संसार में है माताओं के लिए कि दो माता है, ईयर ऑफ द जोक कहा जाता है इसे, टू वुमेन सिटिंग टूगेदर माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, कि दो महिला एक साथ बैठी है चुपचाप अपना अपना काम कर रही है, इसे ईयर ऑफ द जोक कहा गया था। बाबा कहता है वो झूठ है, यहां पर माताएं प्यार से आपस में मिलकर बिना किसी कलह के सेवा करती है, ऐसे रूहानी गुलाब सदा खुश रहने वाली माताएं हैं। तो माताओं को संसार ने गिराया, ढोल गवार शुद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, नरक का द्वार बताया ठोकरे दिलाई, और भगवान ने क्या बना दिया, ठाकुर बना दिया, वरदानों से पलने वाली है, कितने ऊंचे सम्मान दिया है, ज्ञान का सीधा कलश रख दिया माताओं के सिर पर। बाबा ने बहुत महिमा की माताओं की। तो सारी मुरली में एक तो चार स्वरूपों का अभ्यास है, बाबा ने कहा इन स्वरूपों का रोज अभ्यास करना है, मन बुद्धि में रोज दोहराना है कि हम सत अनादि काल में कैसे थे, समीप थे, समान थे, नजदीक थे, साथ साथ थे, फिर आदि काल में कैसे थे, सर्व प्राप्ति संपन्न थे, फिर कैसे थे बाद में, हमारे एक हमारी पूजा उसके अभी आधार क्या है, संगम युग पर हम कर्म योगी है। एक ही मंदिर में यदि महात्मा धर्मात्मा और देवता के चित्र रखे जाए तो देवताओं की पूजा होगी, उनकी नहीं होगी, वो भी विधिवत विधिपूर्वक नियम से पूजा होगी, वो पूजा हमारी। और यहां संगम युग के तो क्या कहने कि स्वयं भगवान आया है, आत्मा परमात्मा दोनों बाप दादा द्वारा पालना पढ़ाई, ऐसा भाग्य। तो मुरली की संक्षिप्त में यह चर्चा हुई, कल रात में इस मुरली पर लगभग 30 प्रश्न थे, उस पर अलग रीति से चर्चा हुई थी। तो मुरली से प्रश्न निकालना और उसकी चर्चा करना, ये भी एक विधि है चर्चा करने की। दूसरी विधि जो यहां हमने की, तो ऐसे कैसी आत्माओं को, चारों ओर के श्रेष्ठ आत्माओं को, देखो भगवान याद प्यार देता है, कभी सुना नहीं कहीं कि भगवान आकर ऐसी महान आत्माओं को याद प्यार देता है। भगवान का रोज खत आता है, तो ऐसी चारों ओर के श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसे आदि मध्य अंत श्रेष्ठ पाद बजाने वाली आत्माओं को, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों के खजानों से, एक श्रेष्ठ संकल्प से बाकी सारी शक्तियों को, श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से बाकी सारी शक्तियों को बढ़ाने वाली आत्माओं को, मन बुद्धि को कंट्रोल नियंत्रण में रखने वाली आत्माओं को, भगवान कह रहा है ऐसा बनो नहीं तुम हो, कितनी अच्छी विधि है उसकी, करने वाली आत्माओं को अर्थात तुम हो, भाई जी भी कल क्लास में कह रहे थे ना परसों, तुम हो, ऐसी आत्माओं को सदा प्रयोगी के साथ साथ प्रयोगी बनने वाली आत्माओं को, सच्चे प्रयोगी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।